तारीख 7 जनवरी दिन मंगलवार, कार्यक्रम दिन भर के साथ मैं हूँ मानसी दास। निर्भया के दोषियों की फांसी का दिन मुकर्रर, निर्भया की मां ने कहा,
इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको साथ मिलेगा।
अहमदाबाद में NSUI और ABVP आमने सामने, ABVP ने कहा,
इस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में NSUI गुजरात विद्यार्थी परिषद कार्यालय पे आके लोग लगाने की बात करे कहाँ तक उचित है।
BBC के खजाने से आज होगी एक खास पेशकश।
हिंदुस्तान के हिंदू के जहन में ये एक जहर उतर चुका है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस देश को बंटवाया और वो यहाँ मौजूद है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, कमलेश मठेनी से। राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया मामले के चारों दोषियों को का डेथ वारंट जारी हो गया है। पटियाला हाउस अदालत ने फांसी के लिए 22 जनवरी 2020 की तारीख और सुबह 7 बजे का समय तय किया है। हालांकि वे दोषी 14 दिनों के अंदर फांसी के खिलाफ दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। गैंगरेप हत्या के मामले में अदालत अक्षय पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह को पहले ही दोषी करार दे चुकी थी। इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के जनाजे में भगदड़ मच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक भगदड़ में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उस समय हुआ जब केरमान शहर में सुलेमानी के जनाजे में करीब बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। सुलेमानी केरमान शहर से ही थे। कासिम सुलेमानी ईरान की कुर्स फोर्स के प्रमुख थे। उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमेनेई के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली शख्स माना जाता था। उनकी मौत के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राज्य न्यू साउथ वेल्स में जंगल की आग के कारण अपना घर छोड़कर गए कई लोगों ने अब वापस लौटना शुरू कर दिया है। यहां आग में करीब 2000 घर जल चुके हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उन्होंने लगभग 20,000 घर बचा लिए हैं। मौसम में ठंडक आई है, लेकिन इस हफ्ते के अंत में तापमान के फिर बढ़ने की आशंका है। अनुमान के मुताबिक आग से अब तक करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल बुश फायर रिकवरी एजेंसी के नेता एंड्रू कॉलविन ने कहा,
26 lives have already been lost. We have unaccounted for people across Australia.
अब तक 26 जाने जा चुकी हैं, 1800 घर तबाह हो चुके हैं। ये संख्या तब है जब हमने आउटहाउसेज, सार्वजनिक जगहों और स्कूलों को इसमें नहीं गिना है। हमने इससे प्रभावित हुए कारोबार और दफ्तरों को भी अभी नुकसान में शामिल नहीं किया है। इस आग से हुए नुकसान की कोई तुलना नहीं है। ये थे नेशनल बुश फायर रिकवरी एजेंसी के नेता एंड्रू कॉलविन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन की एक युवती को साइप्रस में गैंगरेप के झूठे आरोप में दोषी पाए जाने के बाद उनके जेल की सजा को 4 महीने टाल दिया गया है। 19 साल की इस युवती को अपने मूल बयान से पलटने का दोषी पाया गया था। युवती ने साइप्रस में एक रिजॉर्ट में इसराइल के पर्यटकों पर रेप का आरोप लगाया था। युवती का कहना है कि पुलिस ने उन पर दबाव डालकर यह स्वीकार करवाया है कि उन्होंने झूठ बोला था। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। युवती के वकील का कहना है कि उनके घर वापस आने से उनका परिवार बेहद खुश है और वो उनकी सजा के खिलाफ आगे अपील करेंगे। वकील ने युवती के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया। इस नौजवान लड़की को अपने सम्मान और मानवाधिकारों से वंचित किया गया है। इस बात की भी चिंता थी कि वो आगे की कानूनी प्रक्रिया से कैसे निपटेंगी, लेकिन हर जगह से मिले समर्थन ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। ये थे रेप का आरोप लगाने वाली ब्रिटेन की एक युवती के वकील के शब्द। बांग्लादेश में एक छात्रा के साथ रेप के विरोध में राजधानी ढाका में दूसरे दिन भी स्टूडेंट्स का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पीड़िता ढाका विश्वविद्यालय में दूसरे वर्ष की छात्रा हैं। रविवार शाम को विश्वविद्यालय की बस से उतरने के बाद उन पर ये हमला हुआ था। उन्हें बेहोशी की हालत में सड़क पर छोड़ दिया गया, जहाँ वो घंटों तक पड़ी रहीं। इस मामले के सामने आने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया और हमलावर को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। BBC समाचार।
BBC बीबीसी हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली की एक अदालत से आज आए एक अहम फैसले से। दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की रात को हुए निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के 7 साल बाद 4 दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट आज जारी हो गया है, यानी उनकी सजा का दिन और समय तय हो गया है। पटियाला हाउस अदालत ने फांसी के लिए 22 जनवरी 2020 की सुबह 7 बजे का समय तय किया है। सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी की रिपोर्ट।
अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोषियों का पक्ष सुना। इस दौरान मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जाने के लिए कहा गया था। गैंगरेप और हत्या के मामले में अदालत अक्षय, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और मुकेश सिंह को पहले ही दोषी करार दे चुकी थी। निर्भया की मां ने पटियाला हाउस अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि जल्द से जल्द चारों दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी किया जाए। फैसले के बाद उन्होंने कहा,
इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको साथ मिलेगा।
वहीं निर्भया के पिता ने कहा,
एक जरूर है कि इस तरह के हैवानगी करने वाले लोगों के मन में एक डर जरूर पैदा होगा, क्योंकि चार चार जब एक साथ लटकाए जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी भी सोचेगी कि नहीं हम क्या करें क्या ना करें।
इस फैसले पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खुशी जताई है और कहा है,
जज का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि अब इतने साल बाद ही सही फाइनली उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है और देश में अब ये जितने भी रेपिस्ट हैं उनको मुझे लगता है इस निर्णय से कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा। साथ ही मैं केंद्र सरकार से भी अपील करती हूँ, 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है, अगर कोई रेप करता है, जघन्य अपराध करता है, उसे 6 महीने में फांसी की सजा दीजिए, ऐसा कानून बनाइए।
हालांकि दोषी 14 दिनों के अंदर फांसी के खिलाफ दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे।
आगे का फाइलिंग करना हमारा काम है, डिसीजन लेना कोर्ट का काम है। अब ये देखना है कि इस देश पर मीडिया भारी होती है, पब्लिक भारी होती है, पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर जो इस केस में शुरू से ही रहा है, ना तो निष्पक्ष जांच हुई, ना निष्पक्ष फैसले हुए, ना कोर्ट ने अपने लीगल रेमेडीज को पूरी तरह से करने का प्रयास किया।
16 दिसंबर 2012 की रात राजधानी दिल्ली में 23 साल की एक मेडिकल छात्रा के साथ 6 पुरुषों ने एक चलती बस में गैंगरेप किया था। एक प्रमुख आरोपी राम सिंह ने ट्रायल के दौरान ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य अपराधी जो घटना के वक्त नाबालिग साबित हुआ था, उसे सुधार गृह भेजा गया था। उसे अगस्त 2013 में 3 साल सुधार गृह में बिताने की सजा सुनाई गई थी। अब यह अपराधी व्यस्क हो चुका है, लेकिन तय नियमों के अनुसार उसकी सजा पूरी हो चुकी है। अब वो एक चैरिटी संस्था के साथ है, क्योंकि बाहर उसे सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। अन्य 4 आरोपी मुकेश, अक्षय, पवन और विनय ने मार्च 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में इन सभी को मौत की सजा देने पर मंजूरी दी गई थी।
कोर्ट का फैसला, निर्भया के चारों दोषियों को 22 जनवरी को होगी फांसी। रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। आज गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन NSUI और RSS के छात्र संगठन ABVP के बीच हिंसक झड़प हुई है। परसों रात दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा का NSUI के कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और वो अहमदाबाद के पनाड़ी इलाके में ABVP के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मामला जल्द ही गड़बड़ा गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की अहमदाबाद में मौजूद हमारे सहयोगी भार्गव पारिक से।
देखिए अभी ताजा हालात तो अभी मामला पूरा शांत हुआ है। आज सुबह ABVP के दफ्तर पे NSUI के सभी कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे थे और NSUI के कार्यकर्ता और ABVP के कार्यकर्ता के बीच में भिड़ंत हो गई थी और जिसके अंदर 4 NSUI के कार्यकर्ता घायल हुए थे, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है, अभी भी अस्पताल में है। 2 को अभी उन्होंने प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देके उनको हॉस्पिटल से रिहा किया गया है। दूसरी दूसरा अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इन पूरे मामले को देखते हुए ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के द्वारा उनके ऊपर पहले से ही पूर्व नियोजित हमला किया गया था और ये हमले के अंदर उनके साथी घायल हुए थे, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए थे। और कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने भी ये कहा है कि ये जो पूरा मामला है वो छात्र और टीचर्स की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र को ये आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा।
अघोषित आपातकाल इस देश के अंदर लागू हो गया है और मैं मानता हूँ कि शिक्षा के हित में अगर विरोध करना गुनाह है तो मैं मानता हूँ कि गुजरात का हर एक छात्र उसका विरोधी है।
सर बात की जाए तो एबीवीपी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 150 एनएसयूए के छात्र थे और चारों दिशा से,
तो वीडियो में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो तो झूठ बोलने में तो माहिर है।
तो एबीवीपी के जो स्टेट यूनिट के अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है कांग्रेस उनकी आवाज में बात कर रही है। तो कांग्रेस ने पहले से ही यहाँ पे तालाबंदी करने की कोशिश की थी और बीजेपी के लोगों को उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने हमला किया है।
इस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में एनएसयूए गुजरात विद्यार्थी परिषद कार्यालय पे आके लोग लगाने की बात करें कहां तक उचित है? ये उचित नहीं है, ये इनको शोभा देता नहीं है। मैं उनके नेताओं को कहता हूं कि आपकी स्टूडेंट विंग को समझाइए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑफिस पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो।
हालांकि अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है पुलिस के, हमारी जो बात हुई है वासरा पुलिस स्टेशन के CU पवार के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने ये कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, नजदीक के CCTV फुटेज को भी खंगाला जाएगा और उसके बाद सभी पे एक्शन लिया जाएगा।
अहमदाबाद में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में, जानकारी दे रहे थे भार्गव पारीख। वहीं परसों रात JNU में हुई हिंसा की करीब 45 घंटों बाद आज विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार सामने आए और कहा कि हिंसा किसी बात का समाधान नहीं। BBC संवाददाता फिलहाल JNU में है अनंत प्रकाश, उन्होंने वहां का ताजा हाल क्या है, इस स्थिति के बारे में अब से थोड़ी देर पहले मुझे जो जानकारी भेजी वो सुनिए।
मानसी जी, हमने आज जो पूरे दिन देखा JNU में अलग अलग तरह के वर्जन आ रहे हैं 5 तारीख की घटना को लेकर, स्टूडेंट काफी डरे हुए हैं, कई हमने PhD स्टूडेंट से बात की, कई जो लैंग्वेज में पढ़ने के लिए JNU में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट उनसे बात की, लेकिन किसी भी स्टूडेंट की ओर से कोई स्पष्ट बात निकल के नहीं आ रही है कि 5 तारीख को क्या हुआ और किसने कैसे इस घटना को अंजाम दिया। कोई भी अब तक क्लैरिटी नहीं बन रही है कि वो नकाबपोश लड़के कहां से आए और उनके पीछे कौन था। हमने उस सर्वर रूम में जाकर देखा जिसको तोड़े जाने की बात हो रही है, सर्वर रूम में ताला लगा था और वहां पर कोई भी टूट फूट के निशान नहीं देखे हमने। अगर हम ABBP पक्के पक्ष की बात करें तो लड़के काफ़ी यहां पर नहीं रुक रहे हैं, वो दिन में थे यहां पर, इसके बाद वो कैंपस से बाहर चले गए हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर एक तरह का खतरा महसूस हो रहा है। और लेफ्ट पार्टियों से जुड़े छात्रों की बात करें तो वो एक तरह के अपने विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। यहाँ पर आज कन्हैया कुमार, योगेंद्र यादव और तमाम दूसरे नेताओं को हमने देखा जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी।
जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता आनंद प्रकाश। देश के विकास, अर्थव्यवस्था और मौजूदा स्थिति से जुड़े कई मुद्दों पर कल भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के नेतृत्व में करीब 10 संगठन देशव्यापी आम हड़ताल कर रहे हैं। यूनियनों को उम्मीद है कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस आम हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। इस आम हड़ताल की क्या मांगे हैं, ये समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के महासचिव तपन सेन से।
12-point charter of demands है, उसको साथ subsequently add हुआ the new political development and economic development that came into being in the preparatory phase of the strike. जो main demands से जैसा minimum wage level, statutory minimum wage को कम से कम 21,000 करना, ये कोई arbitrary demand नहीं है, this is as per the formula agreed जो भारतीय श्रम सम्मेलन में जो आम सहमति से एग्री हुआ जो फॉर्मूला मिनिमम हुए उसी को अगर आज का प्राइस लेवल में लागू किया जाए तो ये अमाउंट यही आता है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट मांग है जो समान काम के लिए समान वेतन, खास करके ठीका मजदूरों को एक ही काम में लागू कर रहा है और रेगुलर वर्कर से आधे से भी कम तनख्वाह मिलता है और कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रहा है। तीसरा बात है जो महंगाई को ऊपर कंट्रोल किया जाए, एसेंशियल कमोडिटीज जो है उसका ऊपर जो स्पेकुलेटिव ट्रेड चल रहा है उसका ऊपर पूरा बैंड लगाया जाए और इसके ऊपर गवर्नमेंट का रेगुलेशन होना चाहिए, प्राइस रेगुलेशन होना चाहिए। चौथा मांग है जो पूरा वो जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जिसमें रेलवे है, डिफेंस है, पेट्रोलियम है, इंश्योरेंस सेक्टर है, बेतासा जो निजीकरण चल रहा है, इसको खिलाफ श्रम कानून में जो वो बदलाव ला रहा है इन द नेम ऑफ लेबर कोड, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग जो राइट है उसको टोटली डिसमेंटल कर रहा है इन द नेम ऑफ कॉम्बाइनिंग ऑल द 44 लॉज इन द 4 लेबर कोड. प्रैक्टिकली ये लोग इसको कम्प्लीटली डाइल्यूट कर रहा है. वॉट एवर प्रोटेक्शन इज देयर एंड राइट आर देयर फॉर द वर्कर्स, उसको डिसमेंटल कर रहा है. तो इसको खिलाफ भी हम लोग ए बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मांग है.
ये जो लिस्ट है, इसमें आपने जो एक लिस्ट इसमें जोड़ी गई है सीएए को विड्रॉ करना
आ रहा है, ये लेके जब सबको एक करके हम लड़ रहा है, तब समाज के अंदर डिसरप्शन पैदा करने के लिए, डिविजन पैदा करने के लिए ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चला रहा है सरकार थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन. और उसको साथ साथ अभी सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया, एनपीआर, एनआरसी, ए भी लाया. अगर जनता का एकता मेंटेन नहीं कर पाएगा तो अब लड़ेगा कैसे? तो इसको खिलाफ भी हम आवाज उठा रहा है.
क्या भारतीय मजदूर संघ भी आपके साथ उतरेगा, बिकॉज वो सबसे बड़ा संघ है?
नहीं, बीएमएस सबसे बड़ा संघ है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में उसका कोई असर नहीं है.
कल ट्रेड यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल होने वाली है, और क्या मांगे हैं ये बता रहे थे भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के महासचिव तपन सेन. वहीं भारतीय मजदूर संघ, जो इस हड़ताल में शामिल नहीं हो रही है, उसके महासचिव ब्रिजेश उपाध्याय का क्या कहना है, सुनिए.
अभी उनका अपना निर्णय है, हमारा अपना निर्णय है. वो जिन्होंने निर्णय लिया वो कर रहे हैं, और ये वर्कर्स की कॉल नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड ट्रेड यूनियंस है, वो अपने पार्टी बॉसेस के लाइन पर जा रहे हैं. तो बीएमएस इसका पार्टी नहीं है डिसीजन का. सीए का मामला है, धारा 370 है, 10 प्रकार की बातें हैं, उसका वर्कर से कोई मतलब नहीं ना.
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें. भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारा के बाहर बीते शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद सिखों के खिलाफ प्रदर्शन और पत्थरबाजी हुई. इस घटना पर प्रधानमंत्री इमरान खान ने खेद प्रकट किया और कहा कि वो इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और सरकार सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. इस घटना के बाद कल शाम बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी गुरुद्वारे के बाहर पहुंची और वहां उन्होंने एक प्रत्यक्षदर्शी से बात की.
मैं इस वक्त ननकाना में गुरुद्वारा जन्मस्थान के बाहर मौजूद हूं. जो यहां पे विटनेस हैं उन्होंने हमें बताया कि पत्थर भी फेंके गए थे. मेरे साथ इस वक्त हरमीत सिंह हैं, जो कि लोकल रिहायशी हैं ननकाना साहिब के. वो इस वाकये के दौरान गुरुद्वारे के अंदर ही मौजूद थे. हरमीत, हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि जुमे को सूरत हाल क्या थी?
यहाँ से कोई 200 या 300 मीटर के आसपास उनकी शॉप्स वगैरह हैं, जहाँ पे हाँ वहाँ पे उनकी दुकानें वगैरह है, उनका घर वहाँ पर है. मैक्सिमम तकरीबन 400 बंदे होंगे. हमारे जो लोग थे वो सोशल मीडिया के ऊपर खबर चला रहे थे, कोई छतों के ऊपर बैठा हुआ था, किसी की डायरेक्शन ये थी, और कोई वहाँ पे बैठे हुए थे वो फ्लेक्स के बिल्कुल पीछे, और उनके ऊपर जो है ना डंडे बरसाए गए, और वो यहाँ पे जो है ना अपनी स्पीच वगैरह कर रहे थे. दरवाजों के ऊपर वो जो है ना खड़े थे. गुरुद्वारे की जो सिक्योरिटी मौजूद थी उन्होंने उनको रोका हुआ था, लेकिन जो पुलिस का जो डेलीगेशन था वो काफी देर बाद पहुंचा है. हालांकि चाहिए तो ये था कि वो पुलिस को खबर थी, 2-3 घंटे बाद वो जाके यहाँ पे पहुंचे हैं. आई थिंक उनको पहले से पता चल गया था कि वो ये अगर मामला वहाँ से खराब हुआ है. एजेंसीज हमारे कहाँ पर थी उस टाइम पे?
इस वक्त अब हम ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्म स्थान की जो बाउंड्री वॉल है उससे अंदर खड़े हैं, और उस दिन जो हुजूम इकट्ठा हुआ था ये बिल्कुल जो मेन मरकजी दरवाजा है इसका, इसके बाहर लोग मौजूद थे. तो हरमीत, जो लोग अंदर थे उन पे क्या गुजर रही थी, अंदर का माहौल हमें डिस्क्राइब.
एक तो हमारा जो है ना खत्म चल रहा था, ठीक है. मैक्सिमम यहाँ पे 8 से 10 लोग मौजूद है. हमें ये नहीं पता चल रहा था, हमें भूख भी लगी हुई थी क्योंकि हमने पूरा दिन उस इवेंट को मैनेज किया हुआ था. हमें गम गुस्सा भी था कि यार वो हमारे मजहब के ऊपर इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, तो यकीनन उनका हमें गुस्सा भी था और हम डर भी रहे थे क्योंकि हम کافی تھوڑے لوگ تھے. جب پتھر وغیرہ پڑنے شروع ہو گئے نا, ہم نے کہا کہ بس ابھی تو ہمارے لیے ذرا مشکل ہو گئے, کیونکہ ہم دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ہمیں کچھ تھے ایک دوسرے کا سہارا ہمیں مل رہا تھا. جب ہمارے کچھ کزن یا جو رشتے دار ہیں وہ آ رہے تھے, تو انہوں نے کچھ مسلمان وہاں پہ جو سائڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, جو ہمارے لوگوں کو انہوں نے سیکیور کیا کہ آپ یہاں سے جے وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں سیکیورٹی بھی دی ہیں. جو مسلمان ویر ہیں جو سمجھتے تھے کہ یہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں, انہوں نے ہمیں سیکیورٹی بھی دی ہیں.
ننکانہ صاحب میں کیا ہوا ایک بتا رہے تھے ایک پرتیک درشی. ایران کے سینیہ کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے پارتھیو شریر کو آج ان کے شہر کرمان میں پورے سمان کے ساتھ دفن کرنا تھا, لیکن اب اسے کچھ وقت کے لیے ٹال دیا گیا ہے. لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ انہیں انتم ودائی دینے کے لیے پہنچے تھے, اور اس دوران بھگدڑ مچ گئی جس کارن قریب 40 لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ 213 لوگ گھائل ہوئے ہیں. شکروار کو امریکہ کے ایک ہوائی حملے میں ایران کے جنرل سلیمانی کی ہتیا کر دی گئی تھی. بی بی سی سمواداتاؤں کے بھیجے بیورے کا سار سنیے آدرش راٹھور سے.
پورے سمان کے ساتھ کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے شو کو آج ان کے شہر کرمان میں دفن کرنا تھا. انہیں انتیم ودائی دینے کے لیے لوگوں کی اتنی بھیڑ امڑ پڑی جتنی شاید امید نہیں تھی, لیکن اس دوران بھگدڑ مچ گئی اور قریب 40 لوگوں کی موت ہو گئی. اس کے بعد سلیمانی کے انتیم سنسکار میں اب دیری ہوگی. ادھر جنرل سلیمانی کی موت کے بعد ایران امریکہ سے ناراض ہے. ایرانی ریولوشنری گارڈ فورس کے پرمکھ حسین سلامی نے کہا کہ وہ جنرل سلیمانی کی موت کا بدلہ ضرور لیں گے.
انتقام میگیریم, اما اگر حرکت دیگری انجام دهند آنجا را که دوست دارند.
ہم اپنے دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. اگر انہوں نے ایک اور حرکت کی تو ہر ان جگہوں کو زمین دوز کر دیں گے جن سے انہیں پیار ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ جگہیں کون سی ہیں. یہ تھے ایرانی ریولوشنری گارڈ فورس کے پرمکھ حسین سلامی کے شبد. ایران کی سنسد نے آج ایک بل پارت کر کے امریکی سینا کو آتنکوادی قرار دیا ہے. ساتھ ہی جنرل سلیمانی جس قدس فورس کا نیتتو کر رہے تھے اس کے لیے سرکار نے $22 کروڑ کا الگ سے آونٹن کیا ہے. یہ فورس ودیش میں سینیہ ابھیانوں کو انجام دینے کے لیے جانی جاتی ہے. ایران کے ودیش منتری جواد ظریف کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پرشاسن نے جنرل کی ہتیا کر کے ایک بڑی غلطی کر دی ہے.
جای تعجب نیست کہ رئیس جمہور بی ادب و گستاخ.
اس میں کوئی آشچرے کی بات نہیں ہے کہ امریادت اور بنا سوچے کام کرنے والے امریکی راشٹرپتی اور ان کے ودیش منتری نے چرم پنتھ اور کٹر پنتھ کے خلاف لڑائی چھیڑنے والے اور شانتی لانے والے ایک جنرل کو مار کر بڑی رڑنیتی غلطی کر دی ہے. اب وقت آ گیا ہے, انہوں نے ایک بڑا جوا کھیلا ہے اور انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ایشور کی بات ہی صحیح ہوتی ہے. جو صحیح ہے جیت اسی کی ہوتی ہے. یہ تھے ایران کے ودیش منتری جواد ظریف کے شبد. ایرانی جنرل کی عراق میں ہتیا کے بعد عراق کی سنسد نے ایک پرستاو پارت کر سبھی ودیشی سینکوں یعنی امریکی سینکوں سے ملک چھوڑنے کو کہا تھا. اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر عراق میں امریکی سینیہ اڈے کو بنانے کا خرچ عراق واپس کرے گا تو وہ سینکوں کو واپس بلائیں گے. عراق نے فی الحال سنیکت راشٹر کو لکھا ہے کہ وہ امریکہ کے حملے کی نندہ کرے. ادھر امریکہ کے ٹرمپ پرشاسن نے سنیکت راشٹر کی ایک بیٹھک میں شرکت کرنے نیو یارک آ رہے ایران کے ودیش منتری جواد ظریف کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے. حالانکہ یہ بیٹھک کافی پہلے سے ہی پرستاوت تھی, لیکن آشنکا جتائی جا رہی تھی کہ جواد ظریف جنرل سلیمانی کی ہتیا کے بارے میں سرکشا پریشد سے بات کر سکتے ہیں.
رپورٹ سنا رہے تھے آدرش راٹھور. شروتاؤں, آپ کی چٹھیاں اور ای میل ہمیں لگاتار مل رہے ہیں, جنہیں ہم ادھک سے ادھک آپ کی رائے میں شامل کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے بی بی سی ریڈیو شارٹ ویو بند ہونے والا ہے. دن بھر کاریکرم کا آخری پرسارن 31 جنوری 2020 کو ہوگا. ریڈیو کے اپنے لمبے اتہاس میں بی بی سی نے انیک سمسامیک وشیوں پر رپورٹ اور خاص سیریز پرسارت کی ہے. اسی خزانے سے کچھ موتی ہم آپ کے لیے چن کر لائے ہیں تاکہ پرانے کاریکرموں کے بہانے پرانی یادوں کو جاتے جاتے ایک بار پھر تازہ کیا جائے. ریڈیو پرسارن کے آخری دن تک ہم آپ کو لگاتار بی بی سی کے خزانے سے پرانے کاریکرموں کی جھلکیاں, جانی مانی سیریز کی جھلکیاں اور پہلے ہوئی بات چیت کے انش سناتے رہیں گے. آج اس کی پہلی کڑی میں سنواتے ہیں ریحان فضل کی غیریت سے پردے سیریز کی ایک جھلک جو 1997 میں ریڈیو پر پرسارت ہوا تھا.
غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں. बिछड़ों को फिर मिला दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शे दूर मिटा दे।
नमस्कार, रेहान फजल की ओर से। व्यक्तिगत जीवन में चुप्पी का अपना महत्व है। कुछ बातें कहने लायक नहीं होती, कुछ को शर्म लिहाज से दबा लिया जाता है। या शायद हम इसलिए भी कभी कभार चुप्पी साध लेते हैं कि हमें लगता है कि वो अनसुना रह जाएगा। भारत में जिस तरह का लोकतंत्र है, वहां ढोल करतालों शोर नारों की अपनी उपयोगिता है, वे चाहे हमें कितने ही कटु कर्कश और कर्णभेदी जान पड़े। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र की अपनी चुप्पियां नहीं होती। भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों को ही ले, सच पूछा जाए तो भारत में सेक्युलरिज्म का स्वर्ण महल हिंदू मुस्लिम संबंधों के बारे में चुप्पियों की ईंटों से ही चुन चुन कर खड़ा किया गया है। क्या हिंदू और मुसलमान में कुछ भी साझा नहीं है? क्या इन दोनों के बीच खैरियत के पर्दे इस हद तक बढ़ चुके हैं कि भारत में राष्ट्रीयता को नए ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए? हिंदू और मुसलमान के बीच आजादी के 51 वर्षों बाद भी इतनी दूरी क्यों है? हमने सबसे पहले यह प्रश्न रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के समक्ष।
47 के बाद एक यह अनुभव यहाँ के मुसलमानों में और विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह के जो विद्यार्थी थे उनमें यह आया कि हमारे कारण से ये देश का विभाजन हुआ, और देश के विभाजन के बाद जो घटनाएं हुई जो बड़ी दुनिया के लिए लज्जित करने वाली थी, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमको यहाँ के लोग रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, इसलिए एक थोड़े से वो अपने शेल में से चले गए चुपचाप। आप लोगों को ये फील करना चाहिए कि आप इसी देश के हज़ारों साल की जो कल्चर है उसके आप भी हकदार हैं, आपको अलग नहीं है। आपकी कल्चर कोई बाहर के आक्रमणकारी वालों से मिलती जुलती नहीं है। आपको भी नाज होना चाहिए, इस देश में शंकर हुआ, इस देश के अंदर बुद्ध हुए, इस देश के अंदर कोई महावीर हुए, पाकिस्तान बन गया। ऐसे लोग जो थे कुछ चले भी गए, पर आपके तो ध्यान में आया कि अधिकांश को तो यहीं रहना पड़ा है। तो अब आपको सोचना चाहिए कि भाई कौन से इरिटेंट्स हो सकते हैं, किन बातों के करने से ये आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। परंतु दुर्भाग्य से ये सिलसिला न करने के बजाय लोगों ने ये कोशिश करनी शुरू की कि चुनाव के लिए हमको मुसलमानों के वोट किस तरह प्राप्त हो सकते, और इसलिए उनको हैंडलिंग जो है नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट एज ए नेशनल ऑफ दिस कंट्री, बट एज ए वोट बैंक।
देश विभाजन के समय भारतीय मुसलमान को संदेह की दृष्टि से देखा गया था, लेकिन ये उम्मीद भी पैदा हुई थी कि पाकिस्तान बनने के बाद सांप्रदायिकता की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा ही। प्रख्यात पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व रेजिडेंट एडिटर सईद नकवी कहते हैं,
आज तक ये नहीं तय हो पाया कि पाकिस्तान दरअसल बनाया किसने। मैं तो ये जानता हूँ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर ने भी रिज़ाइन नहीं कर दिया, भूख हड़ताल नहीं कर दी। दो लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, एक का नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे का नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर ये पूरा वाक़या पूरे तरीके से ये अफसाना सुनाया नहीं जाएगा तो हिंदुस्तान के अंदर कम्युनलिज्म की जो जड़ है वो कभी हटेगी नहीं। हिंदुस्तान के हिंदू के जहन में ये एक जहर उतर चुका है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस देश को बंटवाया और वो यहाँ मौजूद हैं। ये जहर क्यों है? ये इसलिए कि कांग्रेस ने देश का बंटवारा करा लिया मुस्लिम लीग से मिलकर, और सारा ब्लेम जो था वो मुसलमान के ऊपर डाल दिया। एक आदमी ने ये नहीं कहा कि नहीं भाई इनकी कोई गलती नहीं, ये हमारी गलती है।
1947 के बाद हालांकि हिंदुओं और मुसलमानों की एक नई पीढ़ी ने इस देश में जन्म लिया है, लेकिन विभाजन की विभीषिका को दोनों ही अब तक नहीं भुला पाए हैं। 1947 में 1.5 करोड़ लोग पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो नई छत की तलाश में अपने घरों से निकल पड़े। 10 लाख हिंदुओं और मुसलमानों ने अपने प्राण गंवाए। लूट, हिंसा और बर्बरता का नंगा नाच हुआ।
कार्यक्रम में अब समाचारों के लिए वक्त नहीं बचा है। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला तिलकराज भाटिया ने। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।